नहीं नहीं सब है सब है,
वो लोग चले गए यार।
सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्यसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आज अपना विषय जो है पांच बालयति तीर्थंकर, जो पूज्य गुरुदेव श्री के नित्य क्रम में, एक खिड़की बंद कर देना, एकदम लाइट बहुत सामने आती तो देखो, 175 बोलों में पांच बालयति प्रभु का भी स्मरण गुरुदेव श्री किया करते थे। क्यों? 24 तीर्थंकर में तो उनका नाम उल्लेख हो गया होता है, कोई विशेषता तो होना चाहिए। रजनी भाई आप भी पूछ रहे थे कि क्यों यानी पांच बालयति को अलग से क्यों स्मरण करते थे। वस्तुतः बात ऐसी है कि सम्यक दृष्टि जीव, उनको ज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ नियम से वैराग्य होता है। अगर राग से भिन्न ज्ञान की पहचान स्वानुभूति पूर्वक हो गई है तो वे राग को कभी प्राश्रय नहीं देते, महिमा नहीं दे सकते, रंच मात्र भी। हम आपने समय सार में कौन सा कलश है जिसमें ये बात आती है, सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो गुरुदेव श्री के चित्त में कि पांच बालयति, इनको सारा पुण्य का वैभव मिला है, पांच इंद्रियों के विषय उपलब्ध हैं, हजारों देव उनके सेवक खड़े हैं, 63 शलाका पुरुषों में इन महान आत्माओं को कोई भी तन संबंधी रोग पीड़ा, अरे यहाँ तक का पसीना मलमूत्र आदि नहीं होते। और इसके बावजूद बाहर की सब विषयों की सामग्री उपलब्ध रहती है, इसलिए ये बात कही जाती है आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि कहीं भी रहे वो पूर्ण वैरागी होता है। और बाहर से देखो तो पूर्ण रागी दिखाई देता है, तो अंतर में उसको राग से बिल्कुल विभक्त अपना ज्ञायक प्रभु का आत्मानुभव दर्शन हो चुका है। पांच बालयति में अपन पूजन में एक छंद पढ़ते हैं, श्री वासु पूज्य मल्ली नेम पारस वीर यति नमो मन वच तन धर प्रेम पांचों बालयति। पढ़ते ही नहीं पढ़ते, क्योंकि कम समय में पांचों बालयति के बारे में खासकर मुख्य रूप से वासुपूज मल्लीनाथ और नेमिनाथ पार्श कुमार और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी। हम आपको भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र के बारे में, भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में, भगवान नेमिनाथ के बारे में बहुत कुछ पंचकल्याणकों में भी देखने सुनने को मिलता है। मल्लीनाथ के बारे में कम लोग जानते हैं, उनके कहना चाहिए माध्यम से कोई पंचकल्याण अपन ने तो नहीं देखे, किसी ने देखे हों। उनका भी नैमिनाथ भगवान की तरह हुआ, वो सब बतलाऊंगा। और वासुपूज कौन से नंबर के भगवान? 12वें नंबर के। आप देखिए उनकी आयु थी कितनी थी, 72 लाख वर्ष। कितनी थी? 72 लाख वर्ष। और वो 18 लाख वर्ष तक युवराज पद के रूप में कुमार अवस्था में घर में रहे। कितने वर्ष तक? 18 लाख वर्ष तक। इनके इन 5 बाल्यती तीर्थंकरों की, तीर्थंकर गोत्र प्रकृति का बंध कब हुआ नाम कर्म का? तो कहते हैं सभी, कोई अच्युत स्वर्ग से, कोई अहिमेंद्र से, कोई जयंत विमान से, कोई सर्वार्थ सिद्धि आदि से आए जहाँ जहाँ से, तो वो सागरों पर्यंत की आयु उनकी वहाँ थी। तो उसके और पूर्वों में वे कहीं के राजा महाराजा थे, और वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की देशना सुनते हैं और ये 16 कारण भावनाएं भाते हैं और उनको तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध वहाँ हो जाता है। तो वासुपूज भगवान के बारे में 12वें तीर्थंकर होने से पूर्व के दूसरे भाव में आप पुष्कर द्वीप में रत्नपुरी नगरी के महाराजा थे, तब आपका नाम पद्मोत्तर राजा था, और वहाँ पर उन्होंने युगमंधर अथवा युगंधर ऐसा नाम लिखा है, ऐसे जिनराज पधारे, उनका धर्मोपदेश सुना और वैराग चित्त हो गए और दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाई, और जिन दीक्षा ली समाधि मरण पूर्वक देह छोड़ा और जाकर के 10वें महास्वर्ग में इंद्र हुए और वहाँ पर 16 सागर तक रहे। सागर का माप तो थोड़ा सा कल अनुमान कराया था, 16 सागर तक वहाँ रहे। और उसके बाद चंपापुर भागलपुर में उनका जन्म हुआ। पिता श्री वसुपूज्य थे और माता जयावती, इनका नाम वासुपूज्य पड़ा, जैसे वसुदेव पिता और वासुदेव उनके पुत्र कहलाते हैं, नारायण आदि के लिए बोला जाता है। तो वो स्वर्ग से चित होकर 12वें तीर्थंकर के रूप में यहाँ अवतरित हुए। 18 लाख वर्ष तक युवराज पद के रूप में बीत गए और जन्मदिन पर उनको जाति स्मरण हुआया। 18 लाख वर्ष तक, कितने जन्म दिन निकल गए होंगे इसमें। और उसके बाद उनको पूरा जो बाहर की शोभा वगैरह की जाती ना, लोग मनाते हैं बर्थडे जैसे अपन कहते हैं, वास्तव में तो बर्थडे है, हम बर्थडे तो कहने का है क्योंकि अजन्मा अमर भगवान आत्मा के लिए ये जन्म धारण करना कलंक है, लेकिन उस कलंक को धोने के लिए सारे स्वभाव सब शक्तियाँ अपने पास हैं, बस उस सामर्थ्य का अपने को एहसास होना चाहिए। तो वो प्रभु चिंतवन करते हैं जाति स्मरण में, अरे मैं पहले इंद्र में था, इससे भी अधिक इतना भोगो पुण्य सारी चीज़ें थी, उसके पहले मैं पद्मोत्तर राजा था, ऐसे उनके पूर्व में 9-10 भाव तक सब याद आते हैं। मुख्य रूप से 2 भाव पहले सभी तीर्थंकरों को मैंने देखा, तीर्थंकर नाम करों का बंद हुआ। कल मैंने एक बात कही थी कि वर्धमान महावीर स्वामी को बहुत पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ, लेकिन उनका भी निकला तो उसके पहले जो अभी पढ़ेंगे अपन, कौन से स्वर्ग में थे भगवान महावीर स्वामी जहाँ से वो आए थे, वो थे अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु होकर। तो उसके पहले वो राजा का नाम अभी आएगा, सब उसमें बताएंगे, एक कागज शायद भूल गए, इसमें आएगा। तो वहाँ पर उनको वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, ऐसे सभी का, लेकिन उनका जो काल गया 33 सागर, तो 33 सागर में इतने और तीर्थंकर हो गए, यानी वर्धमान महावीर स्वामी को मैं थोड़ा मिक्स करके भी जिससे ख्याल में आ जाए पूरी चीज़, श्रेयांशनाथ भगवान के काल में उनको तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद, बोलो। और इतने के बाद ऐसा लिखा है उसमें, पुराण में ही है ये सब, अपन पुराण से जान रहे हैं। और इतने सागर पर्यंत चले गए ना काल, तो इतने और तीर्थंकर आदि हो गए। तो बासपूज भगवान के बारे में कहा कि उनको जन्मदिन पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व भव के इंद्र पद्मोत्तर राजा के भव साक्षात वध दिखाई देने लगे, उससे वे वैराग्य को और प्राप्त हो गए। अंतर में सम्यक दृष्टिर भवती नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, अंतर में उनको चैतन्य का वैभव। गुरुदेव श्री कहते हैं बस एक ही प्रश्न ख्याल में आता है कि प्रभु माँ के गर्भ में, जीतू भाई 6 महीने में बोले अनुभव होना चाहिए ना सम्यक दृष्टि अवरत सम्यक दृष्टि को, क्योंकि वासना काल के हिसाब से 6 माह से अधिक नहीं जाता है। कौन कसाए? अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी जाती है 6 माह से अधिक, अप्रत्याख्यानावरण नहीं जाती। तो अनंतानुबंधी तो छायक सम्यक दृष्टि आदि सम्यक दृष्टियों के होती नहीं। तो अब होता होगा उनको, क्योंकि आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि गर्भस्थ शिशु को भी सब उसके एक्शन वगैरह सब ख्याल में आने लगते हैं, कितने क्या समय बाद। तो इट इज़ पॉसिबल, संभव है कि वहाँ पर भी वो अनुभव होता होगा। तो ये इनको जैसे स्मरण हुआ अपने चैतन्य वैभव की महिमा में रंगा हुआ आपका जो चित्त था वासपूज स्वामी का, और उन्होंने उस जन्मदिन को एक बैराग दिन में टर्न कर दिया। इनके माता पिता कभी पूछते नहीं होंगे शादी ब्याह को, पूछते हैं, लेकिन सब तीर्थंकर जन्म से गंभीर और वैराग चित्त होते हैं। पेरेंट्स का और उनके मित्रों का भी साहस नहीं होता, किसी को लौकिक प्रश्न हो तो उनको प्रभु को देख के उनके समाधान हो जाते हैं, ये स्थिति है, इसलिए उनको इतना महत्व है। तो वो ये सब चैतन्य वैभव की महिमा में रंगा उनका चित्त था, तो नश्वर राज वैभव को उन्होंने तत्काल छोड़ा। अरे इतने 16 सागर की आयु, जो कहते महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र की बिता के आए, फिर भी ये जीव अभी तक इन जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटा। तो वो अपने को उस वैराग रंग में रंगते हैं और वो सकल संयम धारण कर लेते हैं, माने जैनेश्वरी जिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और अनेक अन्य राजाओं ने भी आपके साथ संयम धारण किया, प्रायः सभी तीर्थंकरों के साथ ही हुआ है। आप पूरे एक वर्ष भी छद्मस्थ अवस्था में नहीं रहे, आप अपने जन्मदिन फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को मुनि हुए और माँ कृष्णा द्वितीया को आपको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, और वो एक साल जैसे आगे जाता है तो अगली फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी नहीं आ पाई, और उसके पहली माँ कृष्णा दोज को द्वितीया को उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और इस प्रकार से 54 लाख वर्ष तक, कितना बताया था अपन ने उनका आयु, 72 लाख वर्ष, 18 लाख वर्ष तक तो वो कुमार अवस्था में रहे, और 54 लाख वर्ष तक, क्योंकि एक वर्ष का क्या मतलब है 54 लाख वर्ष में, एक वर्ष से भी कम में केवली हो गए। तो वो कहते हैं कि एक वर्ष भी आप छद्म अवस्था में नहीं रहे और अपने जन्मदिन के जो था फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को मुनि हुए और माँ कृष्णा द्वितीया को आप केवल ज्ञान प्रकट कर सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। आप सर्वज्ञ होकर 54 लाख वर्ष तक, 54 लाख ईयर्स तक धर्मोपदेश पूर्वक विहार करते रहे भरत क्षेत्र में। पश्चात कहाँ से मोक्ष हुआ वासपूज स्वामी का? मंदार हिल माने चंपापुर। इस प्रकार से वासपूज स्वामी के 5 कल्याणक का स्थान चंपापुर, भागलपुर या मंदारगिर, एक ही मंदारगिर पास में चंपापुर के, वहाँ से उनको निर्वाण प्राप्त हुआ और वो धन्य हुई चंपापुरी नगरी के, जहाँ आपके 5 कल्याणक मनाए गए। तो गुरुदेव श्री इनको स्मरण करते थे, 5 बाल्य थी, कि ओहो इतना काल जीव का गया। अभी अपने को लगता है लाखों सागरों कोड़ा कोड़ी सागरों का जीवन ये कहाँ चला जाता है, कि कहीं नहीं जाता है, 4 गति में डोलता रहता है जीव। तो जिसको पंच परावर्तन का अंत आने का उपाय स्वानुभव रूप निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसका भाव बढ़ते नहीं, भाव भाव बिगड़ते नहीं, ये कहते ना। तो बस अधिकतर जितने भी तीर्थंकर हुए ये महा उच्च स्वर्गों से, अहमिंद्रों से, और जो पांच अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि आदि, जहाँ पर 33 सागरों की आयु, ऐसा ऐसा व्यतीत करके जहाँ पर धर्म चर्चा करते हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रजनी भाई आप तेजानी जी आप सब डबल डबल पुण्य बांध रहे। आपने ये गोष्ठी आयोजित करके, आपको पता नहीं ये स्वयं बहुत बड़े पंडित हैं रजनी भाई, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रवचन सार का सिनॉप्सिस बनाया, सारांश लिखा, मुझे बहुत मज़ा आता है, माने ये लगे रहते हैं गोष्ठियों में, तो इनको ये याद आना, इनको ये याद आना करे हमें गुरुदेव श्री जो प्रातः काल उठ के स्मरण करते थे, क्यों करते थे? अरे जिसको उस मार्ग पर चलने के लिए उसका मुख मुड़ गया हो तो वो पीछे मुड़ के क्यों देखेगा? तो उनका अनुसरण करते हैं वैरागी जीव, किनका? जिन्होंने पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत की और पूर्णता को प्राप्त कर गए। ऐसे ही ये महामंत्र भी उनका ही दिया हुआ है। तो भासमुज स्वामी इंद्रिय विषयों के जंजाल में नहीं फंसे, क्योंकि सूक्तियों में, नीति शास्त्रों में अपने जैन धर्म की कहा है, संसार कितना, बोले स्त्री के संयोग जितना, यहाँ तक लिखा, क्योंकि उससे वो जीव संसार में ना फंसता जाता है। ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि उसमें जो रहे तो वे मोक्ष नहीं पा सके, लेकिन जो राग की वृद्धि के निमित्त होते हैं उनमें उसको गिनाया गया। तो इसलिए भासपूज स्वामी इन सब यानी 72 लाख वर्ष की आयु में 54 लाख वर्ष तक और वो तत्व उपदेश कर विहार करते रहे और उनके पांचों कल्याण जम्पावरी में मनाए गए। अब जरा हम मल्लीनाथ भगवान का देखते हैं। 19वें तीर्थंकर कौन से थे? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ भगवान के तीर्थंकर होने से पूर्व दूसरे भव में कहाँ थे, कैसे थे? ये अपराजित विमान में अहमिंद हुए कहाँ से? के जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में वैश्रवण नाम के राजा थे, वहाँ रत्नत्रय धर्म की पूजा उपासना करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वहाँ बंद किया था। प्रायः माने जो अहिमिंद्रादि पद से आए उसके पूर्व में वो राजा महाराजा जहाँ पर भी थे वहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तो अपराजित विमान में जाके अहिमिंद्र हुए। वैश्रवण राजा जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में थे, रत्नत्रय की पूजा उपासना करके और ये अहिमिंद्र पद प्राप्त किए। अपराजित विमान माने कौन सा? अनुत्तर विमान है ना पांच, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, और वहाँ उन्होंने 33 सागर तक रही। सागर का माप तो आपके ख्याल में आ जाता होगा, जल्दी से आ जाता है। इतना जीवन काल एक तत्व चर्चा में व्यतीत हुआ जिनका, शुक्ल लेस्या हो जिनकी, कोई बाहर में देवियों का संपर्क भी वहाँ नहीं 33 सागर तक। गुणस्थान चौथा, लेकिन वैराग रस में इतना भीगा हुआ कि मानो मुनिराज की जैसी दशा चलती, कोई चर्चा होती तो रिपीट भी नहीं होती। और अंत में कहते वो मिथिला नगरी में, जो कि बंग देश में मानी जाती है, मिथिला नगरी में कुंभ राजा और प्रजावती रानी के पुत्र हुए। युवराज मल्ली कुमार, ये हुआ था इनका जन्म मगसिर शुक्ला एकादशी को, ये ध्यान रखना है, इसमें बताना है कि कितने जल्दी इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। हम बता रहे हैं, हाँ बता रहे क्या? हम बताएंगे, कोई छह दिन कोई सात दिन, छह दिन में हुआ देखो बतलाते हैं। युवराज मल्ली कुमार जब 100 वर्ष के हो गए, इनकी आयु कितनी थी वो बता दूं पहले, 55,000 वर्ष थी। कितनी थी? 55,000 वर्ष। अब जब वो 100 वर्ष के हुए तो माता पिता ने उनके विवाह की बात कही, तभी वहाँ पर एक पृथ्वीपति नाम के राजा थे, उनकी पुत्री रति कुमारी बहुत सुंदर, उनकी ओर से मंगनी आई मल्लीनाथ के लिए, इन्होंने स्वीकृति दी और मल्लीनाथ की तरफ कहा, वही बेटा तुम्हारा ये सब संबंध का आयोजन कर रहे हैं हम। तो मल्ली कुमार उस समय सिर्फ माँ पिता के सामने क्या बोले, मंद मुस्कान के साथ चुप रहे, और उससे माँ पिता ने उनकी मौन स्वीकृति समझ ली। वो ठीक नेमिनाथ भगवान जैसा हुआ, इसलिए इनका कम पता है, इसलिए हम इसको बतला रहे आपको। और वो मल्ली कुमार के माता पिता को वो सब जन्मदिन का जो तिथि आई मक्सर शुक्ला एकादशी को, वो विवाह का दिन भी वही निश्चित हुआ युगानुयुग से। मिथिलापुरी में राजभवन में विशेष शोभा सजावट की जा रही थी। मैंने देखो देव भी इनके वो होते हैं ना, बहुत हजारों लाखों सब सेवक। मल्ली कुमार ने माँ से पूछा, माँ ये सब शोभा सजावट किस लिए की गई की जा रही है? अरे सहज भाव से पूछा, बेटे माँ ने हंसकर कहा, ये सब तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है। तो मल्ली कुमार क्षणभर स्तब्ध होकर माता की ओर देखते रहे, फिर बोले, माँ मैं अपने आत्मा को संसार बंधन में नहीं बांधना चाहता, मुझे तो मुक्ति सुंदरी की चाहे, अतः मैं किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहता, मैं तो आत्म साधना पूर्ण कर मोक्ष प्राप्त करूँगा। तीर्थंकर का कल मैंने थोड़ी बात बतलाई थी, चार प्रकार के जगत में जीव होते हैं, आराधक आराधक, आराधक विराधक, विराधक आराधक और विराधक विराधक। इन विच कैटेगरी वी बिलोंग्स टू, वी हैव टू फाइंड आउट अवर सेल्फ। आराधक आराधक माने जो आत्मज्ञान लेके आए और आत्मज्ञान लेके चले गए, मोक्ष भी चले जाए अथवा सम्यक दर्शन के साथ स्वर्ग आदि भी चले जाए, ऐसे भी हुए हैं, वे आराधक आराधक। मुख्य रूप से तो सारे तीर्थंकर मोक्ष जाने वाले होते हैं, वे आराधक आराधक कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आराधक विराधक, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, छायक सम्यक तो नहीं होता है, तो बाहर में नारायण प्रतिनारायण आदि ये सब पद वैभव पा जाते हैं, क्योंकि पूर्व में निदान बंध आदि किया था, और फिर वो कसाय की वृद्धि होती है और उनका परिणाम माने गिर जाता है और मिथ्यात्म में चले जाते हैं और नरक में चले जाते हैं। कालांतर में मोक्ष आएंगे, बात सही है, तो वे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, आराधक विराधक। और तीसरी कैटेगरी, अब ये दो कैटेगरी के जीव, आराधक आराधक और आराधक विराधक, क्या ये दो कैटेगरी के जीव पंचम काल में जन्म लेते हैं? पंचम काल में ये दो कैटेगरी के जो शुरू के हम बतला रहे हैं, ये जन्म लेते हैं क्या? नहीं लेते, ख्याल में है ना। तो तीसरी कैटेगरी बतला रहा हूं, विराधक आराधक। पंचम काल में इस भरत चित्र में मनुष्य तन जो पाते हैं उनकी बात अपन कर रहे, वे मिथ्या दृष्टि रूप से जन्म लेते हैं। और अब जिनेन्द्र देव तो है नहीं, यहाँ गणधर आचार्य है नहीं, फिर आराधक भाव कैसे प्राप्त कर लेते हैं? कि भाई साहब ये पंचम काल के अंत तक जो जैन धर्म की परिवर्तना है, तो अंतिम तीर्थनाथ उनका जो शासन काल है 21,000 और भी जोड़ो जब से केवल ज्ञान हुआ था, तो इतना उनका ये सारा चलता है, तो वो परंपरा से ये मार्ग अपने तक को प्रकाशित करता हुआ मिल जाता है। और ऐसे कहना चाहिए मार्गानुयायी अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते रहते हैं, और इस क्रम से पंचम काल के अंत तक चला जाता है। तो इसमें आते हैं चाहे कुंदकुंद आचार्य देव हों, अरे चाहे पांच भाव वो क्या बोलते श्रुत केवली हुए, वे तो यहीं जन्मे थे ना, तो वे भी क्या थे, जन्म से तो विराधक थे, वो दृष्टि समझ। लेकिन जैसे ही ज्ञानियों की देशना सुनी, पूर्व के संस्कार जगे और वो आराध्य भाव प्रकट कर गए। कुंदकुंद आदि आचार्य भी, अरे गुरुदेव श्री खुद बतलाते हैं ना, संस्कार जागा ना, अपन दो कैटेगरी बनाते हैं, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। कैसे इनको अंदर से तत्वज्ञान खींच रहा था, कोई संस्कार जोर मार रहा था। इन नियम से जो भी जीव के संबंध संस्कार का, तो अपन ने काफ़ी चर्चा कर ली, भी बताना इतना था। तो हम आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं, एक चौथी कैटेगरी भी बता देते हैं, विराधक। विराधक पहले दो वाले तो नहीं हैं, दूसरी कौन सी है, विराधक आराधक, और चौथी है विराधक। विराधक जी, तो भाई अपन कौन सी कैटेगरी में रखे जाएं? हाँ, तीसरी कैटेगरी में रखे जाएं कि हैं, ऐसा अपने को सोचना चाहिए। अरे गोल्डन चांस मिला है इन महाप्रभुओं के जीवन चरित्र से, हमको ये मतलब नहीं हम छोड़ के भाग जाएं, अरे सब त्याग दिया, केस लॉन्च कर लिया, वैरागी हो गए। वो वैराग जो सम्यक दर्शन वाला होना चाहिए, जिसको राग से भिन्न ज्ञायक आत्मा की अनुभूति हो चुकी। कल कोई पूछ रहा था कि वो 20वां बोल आपने जहाँ पर कहा शुद्ध पर्याय अनुभूति ही आत्मा है, कि भैया ये बखान तो बहुत सुना अपने, अभी राकेश जी जैसे श्रीखंड का बखान कर रहे थे, समझ लेना समझाने के लिए। ऐसे कोई खीर का भी जरा उसमें एक बात कह देना चाहता हूँ कि साहब रमेश जी आपने बोला हेमचंद जी हमारे यहाँ खीर खाने आपको आना पड़ेगा, गया मैं, आप बखान करने लगे, काली गाय का दूध लाए, धुलवाया, ऐसा किया, दार्जिलिंग का सुपर क्लास बासमती चावल लाए, और कश्मीर की शुद्ध केसर लाए, और कावल कंधार की क्या थी किशमिश लाए, ना जाने कितना बखान करते करते वो खीर तो बनी रखी है। अब एक घंटे निकल गया, अरे और सुनो हमने इसमें क्या क्या डाला, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सुनाया जा रहा है। एक घंटा निकल गया, मैंने कहा रमेश जी मेरा तो पेट भर गया। ये 20वां बोल अलिंग्रहण का, ये कहता है तूने अपने को गुणभेद पर्यायवेद से दूर कर अपने त्रिकाली सामान्य को तो पहचान लिया ना, तो पहचानने वाली पर्याय धन्य हुई ना, जिसने परिचय प्राप्त किया, अनुभव स्पान किया, जो स्वाद प्रत्यक्ष हुआ, खरेखर तेज आत्मा छ। वहाँ पर ये है कि अब बातें बंद करो, माने आत्मा की बातें करना पुण्य है और आत्मा से बात करना धर्म है। आत्मा से बात माने शुद्ध उपयोग सुन। तो ये इस प्रकार का ये वर्णन करते हैं मल्लिनाथ स्वामी का। तो जब वे सजावट देख करके राजभवन में जन्मदिन के दिन सोचने लगे किसलिए सजावट हो रही, तो माँ ने क्या कहा, बेटा तेरी शादी और ये सब है इसलिए, तो एकदम क्या जवाब दिया, माँ मैं अपने आत्मा को संसार बंधन में नहीं बांधना चाहता, मुझे तो मुक्ति सुंदरी की चाह है, अतः मैं किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहता, मैं तो आत्म साधना पूर्ण कर मोक्ष प्राप्त करूँगा ही। और इतना इधर बारात का प्रस्थान हो रहा था, उधर मल्ली कुमार गहरे विचार में डूबते जा रहे थे, अचानक उन्हें ज्ञान में आभास हुआ, अरे ऐसी अनुपम शोभा तो मैंने पहले भी पूर्व भाव में देखी है। उन्हें तत्क्षण जाति स्मरण ज्ञान हो गया। देखो तीन ज्ञान के धारी तो वैसे ही होते हैं, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान तो मति ज्ञान का ही भेद है। मति ज्ञान की ताकत कम मत समझो आप, बहुत भेद प्रभेद हैं। कितने भेद हैं रमेश जी मति ज्ञान के, तत्वार्थ सूत्र बताएं कितने भेद प्रभेद हैं, 336 ख्याल में ना, तो वो उसकी बात नहीं जाते, उसी में सब जाति स्मरण भी ग्रहण कर लेना। और जाति स्मरण तो उन्हें अपराजित विमान की विभूति दिखाई दी, असंख्यात वर्ष तक स्वर्गलोक की उस विभूति में मैं रह चुका, अंत में उसका भी वियोग हुआ, फिर उन्हें अपने दूसरे पूर्व भव वैश्रवण राजा का ज्ञान हुआ, वहाँ रत्नत्रय पूजन विधान मैंने किया था, जिन दीक्षा लेकर समाधि मन पूर्वक अहिमेंद्र पद पाया था, तो अब ये मुझे क्या फिर यही चक्कर में घूमता रहना है। और इस वैराग से उन्होंने विवाह के समय वैराग, राज योगी से योगी राज बन गए, राजयोगी बनने जा रहे थे ना, क्या बन गए किशोर भाई, योगी राज बनने चल दिए, क्यों अंतर में तो योगी राजपना बैठा ही था, दृष्टिभेद माने स्वानुभव प्रत्यक्ष से। तो मल्लिनाथ के जीवन की महत्वपूर्ण घटना कि उन्होंने मोह को जीतने के लिए कमर कस ली। आपको मैं बताता देना चाहता हूँ कि खुद अमृत चंद्राचार्य ने प्रवचन सार गाथा 79 की लास्ट लाइन में लिखा है कि ये जो शुभोपयोग है एक ऐसा है, मालूम किसी को क्या उपमा दी, धूर्त अभिसार का जैसा परिणाम है, ये मोह का परिणाम है। इसको भी जीतने के लिए उन्होंने शब्द डाला, अतो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कर्च्यम, कि मैंने इस मोह रूपी सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है, ऐसा शब्द डाला। और जब वो 80 गाथा 81 गाथा लिख करके आगे चले तो 82 गाथा प्रचंड सार की और 199 गाथा गीत अधिकार की, देखना दोनों में रमो तेसम शब्द डाला कि उन एवं जिणा जिणेंदा ऐसा कह करके वे जिन और जिनेन्द्र जिस मार्ग से चलकर तो मार्ग को घोषणा की उन्होंने, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति ही एकमात्र मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। तो उसमें उन्होंने लिखा है 82 गाथा की टीका में अलमिति विस्तृण है, अब बहुत विस्तार से बस करो, व्यवस्थिता मतिर्मम, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, ये सब डाला है अमृत चंद्राचार्य ने। व्यवस्थिता मतिर्मम, अपने अंदर में अव्यवस्थित क्या चल रहा है, मति अव्यवस्थित है, ज्ञान में संशय विपर्य न कुछ इसको एक ज्ञान को ही यहाँ पर लगा करके स्वभाव ज्ञाय को देखे, ज्ञान और ज्ञाय को ये सारे विभ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने मल्ली कुमार के जीवन में हुई और माँ बेटे का संवाद चला और वो समझाते हैं माता पिता ये मोह को छोड़ो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूं, उसके बदले में मैं परमात्मा बनकर तुम्हें दर्शन दूं, क्या यह आपको इष्ट नहीं है, क्या तर्क दिया वो आपका, मैं पुत्र बन के रहूं हूं पुत्र कहलाऊंगा मैं भविष्य में भी कि इनके पुत्र थे मल्ली कुमार, लेकिन मैं इसी पर्याय में आपको परमात्मा बन के दर्शन दूं तो तुम्हें उसमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि शादी ब्याह करा के। माँ चुप हो गई, पिता चुप हो गए, तर्क ऐसा है। पिता बोले हे देव, तीर्थंकर है ना तो सब, हे देव आपकी बात सत्य है, आप तीर्थंकर होने के लिए अवतरित हुए हो, आपको सांसारिक बंधनों में नहीं बांधा जा सकता, आप तो जगत को भी मोक्ष मार्ग बतला कर बंधन मुक्त करने वाले हो, अब हम तुम्हें मात्र पुत्र रूप में नहीं किंतु परमात्मा रूप में ही देख रहे हैं। ये पिता तो एक चीज समझना, तीर्थंकर के माता पिता भी, कोई कोई पिता तो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, कोई तो तीसरे भव में चले जाते हैं, और माताएं एक भाव अवतारी माने एक लेकर दूसरे तीसरे उसमें तीसरे भव में चले जाते हैं स्त्रीलिंग छेद के, और प्रथम आहार दाता जो होते हैं, कुछ ये बातें बताना है जो मैंने अध्ययन की। मुनिराज तीर्थंकर का जीव, जो मुनिराज दो उपास लेकर के वन में जाकर दीक्षित हो जाते हैं, पारणा के लिए आते हैं, एक आदिनाथ भगवान का एक्सेप्शन है कि 6 माह का लेके गए थे, बाकी सब 2 दिन का, और तीसरे दिन आए हैं आहार ग्रहणार्थ। तो जिस नगरी में आते हैं और जिन राजा है जिन श्रेष्ठी के यहाँ प्रथम आहार उनका होता है तो पंचाश्चर्य होते हैं, और वो प्रथम आहार दाता भी या तो तद्भव मोक्षगामी या तीसरे भव मोक्ष आने वाला होता है, ऐसी विशेषता है तीर्थंकर। तो उसमें उन्होंने ये कहा, माता कुछ बोल नहीं सकी, मौन रहकर प्रभु की ओर देखती रह गई, हे माता मैं आत्म साधना में आलस नहीं करूँगा, कुछ ही दिनों में केवल ज्ञान प्रकट करके परमात्म स्वरूप में आपको दर्शन दूंगा, कुछ ही दिनों में बोला, देखो महीनों वर्षों नहीं बोला, वो जो सहज निकल गया अपन बोलते कुछ ही दिनों में मैं आपको वापस मिलता हूँ, या तो परमात्मा रूप में, ऐसा कहकर वे बैरागी कुमार उन्हें नमन करके, अभी नमन करेंगे माता पिता हैं ख्याल में ना, नमन करके वीतरांग मार्ग पर चलने तैयार हो गए। तत्काल लोकांतिक देवों ने आकर प्रभु के वैराग जागृत होने की अनुमोदना की, फिर भी हम आपको संबोधने वाले, वो कहते हैं लोकांतिक भगवान हम आपको संबोधने वाले कौन, लोकांतिक देव हम भी इस दिन की प्रतीक्षा में बैठे हैं लाइन में कंगला भव में मिले, और हम भी पूर्ण वैराग धारण कर ये जन्म-मरण के चक्कर से सदाकाल के लिए छूट जाएं। आप तो स्वयं बुद्ध परम वैरागी हैं, हे देव आप जैसी रत्नत्रय विभूति हमें भी प्राप्त हो। मल्ली कुमार ने जिन दीक्षा हेतु वन गमन का निश्चय किया, 12 भावनाएं भाई, उसी समय इंद्रादि देव भी दीक्षा कल्याणक मनाने हेतु जयंती नामक पालिका लेकर मिथिलापुरिया पहुँचे। हमने ये जो चित्रपट जो बनाया ना पूरा तीर्थंकरों का, उसमें ये सब डिटेल हैं। जितना हो सकता था मैंने वो श्रम करके उसमें लिखा है, और उससे उनको पढ़ने से देखो, टोडरमल जी ने लिखा 200 पेज पर मोक्षमा प्रकाशित, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो चारों योगों का स्वाध्याय कार्यकारी है। हम इसको ऐसा बोलते हैं, द्रव्यान योग तो दृष्टि देता है, अथवा इट टीचेस अस व्हाट इज व्हाट, छह द्रव सात तत्व नौ पदार्थ, ये हमने सब लिखा है उसमें। कुछ लोगों ने लिया था वो, मैं आज लाना भूल गया। तो वो द्रव्यान योग जो टीचर और चरणानुयोग एग्जामिनर, वो परीक्षा लेता है कि साम तुम बंबई में जाके सिद्धि विनायक की लाइन में भी लगते हो और इधर भी आते हो, या बीच में वो विपसना के लिए इगतपुरी भी रुक जाते हो। ये कुछ चीज़ें लास्ट डे में बता रहा हूँ, ऐसे भी हैं। तो अभी उसको निर्णय सच्चा हुआ नहीं देवसाद गुरु का। तो यहाँ पर इस प्रकार से, और क्या बात कह रहा था वो निकल गई, करणानुयोग बोल लगा के। अब सुनिए, द्रव्यानुयोग शिक्षक, चरणानुयोग परीक्षक, और प्रथमानुयोग गवाह साक्षी विटनेस, जिसने पाप किया कहाँ गया, पुण्य किया कहाँ गया, और धर्म किया वो कहाँ गया। अभी मैं करणानुयोग लास्ट में रख रहा हूँ, सुनो। द्रव्यानुयोग में जितने भी शब्द वाक्य आपको मिलेंगे, समय साथ प्रचन साथ द्रव संग्रह आदि सब में देख लेना, है में मिलेंगे प्रेजेंट टेंस में। द्रव्यानुयोग ऑलवेज टॉक्स इन प्रेजेंट टेंस फॉर्म। छह द्रव है, सात तत्व नौ पदार्थ, इनका ये लक्षण ये स्वरूप है, ख्याल में है ना। ऐसा नहीं कि था और होंगे। और पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस की बात आएगी प्रथमानुयोग में, वे ऐसे थे और ऐसे होंगे। रावण तीर्थंकर होगा और सीता का जी उनका गंधर होगा, आता कि नहीं आता है? था होंगे की बात आएगी। तो ये गवाही देता है, इसको हम विटनेस बोलते हैं। किसको? प्रथमानुयोग को। और जो चरणानुयोग है वो डोंट्स एंड डूज की बात करता है। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट बीस्ट, आप पशु नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। सम्यक दृष्टि पशु, सम्यक दृष्टि पशु प्यास लगे पानी पिएगा, जहाँ पर जीव नहीं दिखें उसके लिए वही सक अनुष्ठान है। हम मानवों के लिए कि आपके हाथ हैं, मैं कहता ना हाथी को केला दे तो वो पूरा खा जाएगा, और बंदर को दे तो बंदर को किसने सिखाया कि छिलका नहीं खाना, उसके हाथ हैं। तो इसी तरह से अपने ऊपर घटाना, तो एक कुछ चरणानुयोग अपनों के लिए बनाया जाता है, श्रावकाचार मूलाचार मुनियों आदि के लिए। तो इस प्रकार से चरणानुयोग बुद्धिपूर्वक आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आप दर्शन पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। गुरुदेव कहते ना, व्याचार तरण क्लास स्वाध्याय करो, जो ये यदि सब चीज़ आती है कि इसको हम बोलते हैं पूर्वचर व्यवहार। एक बार बताया था, जो ज्ञानी होता है उसका पूर्वचर व्यवहार कैसा होता है, सहचर व्यवहार कैसा होता है, और उत्तरचर व्यवहार कैसा होता है। जैसे मल्लिक कुमार हैं, अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं, अपन एक ही तीर्थंकर बैराग का जन्म लें तो सबके ऊपर समझ में आ जाएगा कि आत्मज्ञानी हैं। 8 वर्ष के हुए कल बताया था ना, तो उनका जीवन ऑटोमेटिक देश संयमी का हो जाता है। और जब वैराग इतना उमड़ा बड़ा तो वो सकल संयम माने जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं। क्यों? कि पूर्णता के लक्ष्य से ये जो पर्याय जीवन मिला है, चलो अपन इस पर्याय में मोक्ष नहीं पा सकते, नहीं पा सकते तो जो 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चलो मोक्ष नहीं होता तो हमारा पुरुषार्थ, ये सब बुद्धिपूर्वक की जो बात है जिसमें अपन जो समझ रहे सुन रहे, तो इसमें धर्म अर्थ और काम ऐसा ना हो कि अपना जीवन अर्थ काम में व्यतीत हो जाए। इसलिए वो धर्म पुरुषार्थ की ये सब चर्चा है। सच कहें तो व्यवहार में जो अपन ध्यान से सुन रहे विचार कर रहे हैं, ये सविकल्प धर्म ध्यान है, क्योंकि अपन आत्मित की अभिलाषा से इसको अपने में उतारने के लिए चाव से सुन रहे हैं। तत्प्रीति प्रीत चित्ते ने, ये प्रीति पूर्वक सुन रहे। अब चलो उधर आते हैं कि बैरागी मल्लिक कुमार को क्या हुआ, वो चल दिए, अरे फिर रह गया उपयोग इधर जाता है कि ये पूरा करना घड़ी देखते समझे। करणानुयोग, करणानुयोग कहता है तुम क्या मानते जानते हो, क्या आचरण करते हो, आई एम नॉट टू डू एनीथिंग विद दैट। तुम कितना आचरण पालते हो, मुनि हो कि त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, वो ठीक है आपका होगा, हम थर्मामीटर लगा के देखेंगे बुखार उतरा कि नहीं। ये है, इसको कहते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सब बहुत हमने इतना पुण्य किया, इतना भस्सील संयम पाले, हमें मोक्ष क्यों नहीं हुआ। वो इस प्रकार का है, अगर समय जाता नहीं तो बताने को बहुत भाव आते हैं कि मारीची कुमार क्यों रह गया, आदिनाथ बाबा केवल ज्ञानी निमित्त नहीं थे, भरत चक्रवर्ती उनका ही भाई अनंतवीर पहले मोक्ष पा गया ना, सब हो गया, क्यों कि योग्यता नहीं थी, पंजवाब दे। लेकिन सोचो उसके मन में क्या आया होगा कि वाह दादा आप पहले तीर्थंकर और मुझे लास्ट में फेंक रहा हो, जाओ कोई दूसरा तीसरा नंबर लगाते तो अभी ठीक था, मुझे नहीं आपकी बात माननी। कुछ सोचा होगा कि नहीं उसने, क्यों भाग गया था उठ करके, दीक्षित तो हो गया था, आप पहले तीर्थंकर और मैं अंतिम हूँ, ये कोई न्याय है? कौन इसमें न्याय और अन्याय, उसकी होनहार है तो इसी तरह के आते हैं। अरे हम तो ऐसे सुनते हैं हमारे देश प्रदेश में, ये जितने सोनगढ़ी है ना, ये 24 घंटे वो आत्मा की कुटाई पिटाई करते रहते हैं, भगवान आत्मा आत्मा इनको और कुछ दिखते नहीं कूटने पीटने के अलावा, जैसे आत्मा ने इसका क्या बिगाड़ा है। सुनता हूँ मैं सब, समझे हैं सब तरह के जी ख्याल में। अच्छा चलो अभी इधर आते हैं, तो क्या हुआ करणानियों, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण जैसा कार्य। वो कारण कहता है करणानियोग, अंतःकरण अंतरंग में जो कर्म संबंध है वो नियामक कारण है। बहुत चीज़ें बताने की कारणकारी में, कि कोई ऐसा कहे कि जो कल पढ़ा था ना, आत्मज्ञान से रहे थे, तत्वार्थों का बिल्कुल निरूपण सच्चा कर रहा है, आगम का भी ज्ञान है, ग्यारंग नौपुर का पाठी हो और बाहर में बिल्कुल सकल संयम पालता हो, लेकिन करणानियोग कहता है भैया दर्शन भोय का उदय तो थर्मामीटर में पूरा दिख रहा है, आप 100% मिथ्या दृष्टि हो। इसलिए इसमें बहुत चर्चा हुई, अन्ना जी अपने यशपाल जी वो भी एक बार उन्होंने गुणस्थान पर इसका वगैरह लिखी ना, और भी तो चर्चा करते थे कि सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन आधा अधूरा नहीं होता, एक जो अपेक्षा समझना, या तो उसकी पर्याय स्वभाव से पूरी विरुद्ध होगी या पूरी अविरुद्ध माने, या तो मिथ्या या सम्यक। ज्ञान भी सम्यक हो गया लेकिन उसकी पूर्णता 13वें गुण स्थान में, चार्थ की पूर्णता एक चार्थ गुण की अपेक्षा से 12वें में, ऐसे पूर्ण चार्थ की अपेक्षा 2-3 और हैं कि 13वें में होती है, सिद्धत्व अवस्था में होती है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन तो अवृत अवस्था में हो जाता है, तो उसमें और क्या होना बाकी रहा। तो इस प्रकार से उसमें आधा अधूरापन नहीं होता, ये बतलाना था। हाँ ये कहा जाता है, कहा जाएगा कि जो जीव जिन देशना ग्रहण करके प्रायोग लब्धि तक आ गया तो अनंत बार आ गया, जिसका निर्धारण अपने लिए हुआ तो जो जैसे करण लब्धि में गया वो गारंटी से सम्यक दृष्टि हो गया, ये भी बोल सकते आप, कौन से निक्षेप से, द्रव निक्षेप से, क्योंकि भाव रूप प्रणमन होने वाला अंतर्मुखी, तो ऐसी व्यवस्थित व्यवस्थाएं ये सब। तो करणान योग वो कौन है, जज माने जिसमें कारणकारी का अंतःकरण का संबंध बतलाता है, आप पुरुष क्यों हुए, स्त्री क्यों, काले क्यों हुए, गोरे क्यों हुए, तत्रुचि क्यों हुई, इसका वो रेगुलेटर फैक्टर अंदर का तो वही है। एक कर्तकर्म की बात नहीं चल रही, ऐसी सहज निमित्त निमित्त एक संबंध है चतुर्गति प्रवण। तो यहाँ पर ये बतलाते हैं मल्ली कुमार ने जिन दीक्षा हेतु वन गमन का निश्चय किया, और वो इंद्र आदि देव दीक्षा कल्याणक मनाने जयंती नामक पालिका लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। बैरागी कुमार वो पालिका में आरूढ़ होकर आरूढ़ हुए और प्रजाजनों ने बैराग से गदगद होकर के, अब वे आए थे बराती, अब वे भी बन गए मोक्ष वधु के बराती माने, उसमें चल पड़े कई राजा और उनके साथ दीक्षित हो गए, और अनेकों बराती राजा महाराज भी बैराग को प्राप्त होकर भोग मार्ग को छोड़कर योग मार्ग के सहचारी बने। प्रभु ने श्वेत वन में जाकर जिन दीक्षा की तो क्या बोल कर लेते हैं तीर्थंकर प्रभु, नमः सिद्धेभ्य, बस हम उनका जो आदर्श एक ही, अब तो सिद्धत्व की प्राप्ति, तो इस प्रकार से नमः सिद्धेभ्य कहकर के वो दीक्षित हो गए। और दो दिन के उपवास के बाद मिथिलापुरी में नंदीसेन राजा ने नवदा भक्तिपूर्वक मणिराज मल्लिनाथ को आहार दिया, पारणा कराई और देवों ने जय जयकार करते हुए आकाश से पुष्पों की रत्नों की वृष्टि की। मोक्षगामी तीर्थंकर मुनिराज के करपात्र में आहार देने वाले वे महात्मा स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करने वाले पात्र बन गए। आहारदाता तीर्थंकर मुनिराज के करपात्र में आहार देने वाले भी पात्र बन गए मोक्ष प्राप्ति के, क्योंकि ऐसा नियम है कि तीर्थंकर को मुनि दशा में प्रथम पारणा कराने वाला जीव उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभु मल्लिनाथ मुनि दशा में छद्मस्थ रूप से मात्र 6 दिन ही रहे। कितने दिन? 6 दिन। आप देखना, शुद्धात्मा के ध्यान की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित करके घाती कर्मों का क्षय करके वे मात्र 6 दिन में ही पौष कृष्णा द्वितीया को केवल ज्ञान प्रकट करके परमात्मा बन गए। सर्व तीर्थंकरों में छद्मस्थ रूप से रहने का न्यूनतम काल किसका है? मल्लिनाथ मुनिराज का है। जिस श्वेत वन में उन्होंने दीक्षा ली थी वहीं पर उन्हें केवल ज्ञान हो गया हुआ। इस प्रकार चारों कल्याणकों गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण से मिथिलापुरी पावन हो गई। सबका पुरुषार्थ एक सा ही होता है। वहाँ पर अंदर में आप कह सकते एक अपेक्षा से कि एक पक्षा से है कि छपक श्रेणी माणी और हो गया, लेकिन जो छठा सातवां गुण स्थान ये अभी उत्तम चंद जी ने भी बताया था ना, आदिनाथ भगवान का अथवा भरत चक्रवर्ती का बाहुबली आदि का, सब तीर्थंकरों का, लेकिन वो छठे सातवें से वास्तव में जो फ्लाइट जिसका सीधा छपक श्रेणी में ली वो महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से उनका विशेष पुरुषार्थ कहने में आएगा, क्योंकि जो उसके पूर्व भवों में कोई कोई जीव एक बार नहीं दो बार उत्सम श्रेणी चढ़ जाते और गिर जाते, ख्याल में ना, तो वो अपेक्षा से छपक श्रेणी चढ़ने वाला का विशेष पुरुषार्थ कहने में आएगा ही। सर्व तीर्थंकर छद्मस्थ रूप से रहने का न्यूनतम काल मल्लिनाथ मुनिराज का था, और जिस वन में उन्हें दीक्षा ली थी वहीं पर उन्हें केवल ज्ञान, इस प्रकार चारों कल्याणक मिथिलापुरी में ही मैंने उसी क्षेत्र में हो गए, पावन हो गई नगरी। आपकी आयु कितनी थी बताई थी? 55,000 वर्ष। 100 वर्ष की आयु में वे परमात्मा हो गए। अब 6 दिन को किधर गिनना? 100 वर्ष तेजानी जी, उसमें 6 दिन बाद ही क्या हो गया? केवली परमात्मा हो गए। अब माँ पिता को कैसा लगा होगा ये बताओ कि 6 दिन में मैं क्या आश्चर्य दे रहा हूँ, समूषण भर गया, सारी चीज़ हो गई सर। जो इसलिए जो भगवान ने इन्हें कहा था दीक्षा की पूर्व कि माँ तुम हमें पुत्र रूप में देखना ज़्यादा पसंद करोगी कि परमात्मा रूप में, तो वो लिखते हैं कि वो परमात्मा होकर 54,900 वर्षों तक आप तीर्थंकर रूप से इस भरत क्षेत्र में विहार करते हुए धर्मोपदेश करते रहे। आपने राजकुमार अवस्था के मात्र 6 दिन में ही परमात्मा के रूप में देखकर अपने राजकुमार को, अपने पुत्र को, मिथिलापुरी के सब प्रजाजन और माता पिता हर्षातिरेक से बहुत प्रमुदित हो गए। उनके पिता कुंभराज, माता प्रजावती तत्काल प्रभु के संसरण में आ पहुँची। उनका पुत्र इतने शीघ्र परमात्मा बन जाएगा इससे उनको भारी प्रसन्नता। उनको सोच में गई तो क्या, अरे अंदर का वैभव पुरुषार्थ होता है। और उनका जो पुत्र बिछोए का एक शोक था, मन में खेत था, वो सब संताप नष्ट हो गया। और कुंभराज तो उस मुनि होकर उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो गए पिता उनके संवसरण में दीक्षित होकर, और माता एक अवतारी होकर स्वर्ग सिधारी, माने उसके बाद एक बवली करके। और अंत में जब आपकी एक मास आयु शेष रही तब प्रभु सम्मे शिखर पर आकर स्थिर हुए और अंतिम क्षण में योगों का निरोध कर फाल्गुन कृष्णा पंचमी के दिन संबल टोंक से सम श्रेणी में सिद्धालय में विराजमान हो गए। पढ़ते हैं अपन मल्लिनाथ जिन राज की संबल कूट है जे मन वचतन कर पूजूं शिखर संवेद यजे। देखो जो कोई तीर्थंकर मल्लिनाथ जैसे महापुरुष को, कल भी मैंने कहा था, स्त्री प्रयास से मोक्ष हुआ मानते हैं वो तो केवली का वर्णवाद रूप महा पाप है। द्रव स्त्री वेद का उदय मात्र 5वें गुणस्थान तक रहता है, भाव स्त्री वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक होता है और उनके तो अपगत वेद हो जाता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में तो क्या हो जाता है, अपगत वेदी हो गए। और इसके बाद नेमिनाथ भगवान का है, उसका जीवन चरित्र तो उनका अपने को प्राय सबको पता है, हाँ क्या समोषण होता है? एक मास जो समोषण नहीं होता, प्रभु मौन हो जाते हैं, फिर समोषण नहीं रहता, वो वहाँ पर ठोंक पर पहुँच। लोग तो जाते ही होंगे, जाते ही होंगे, नहीं जाते कि संभल नहीं। अब इसकी ठीक है, अब तो अपन प्रभु की बात कर रहे हैं कि उनको क्या हुआ। एक मास पहले अधिकतर तीर्थंकर शांत, बस माने वो हो जाती है वृत्ति, और जो लास्ट में जब मोक्ष होता है तब तो वो ऐसे तो नियोग तो ये है कि अयोध्या में ही सबका जन्म होता है और सम्यक शिखर 700 से ही मोक्ष होता है। लेकिन अब ये हुंडासन भी काल से किसी का चंपापुरी, किसी का मिथिलापुरी जो ही पड़ा, किसी का सौरीपुर या वो द्वारका, ऐसे हुए ना। हाँ ऐसे बहुत, गुजरात का भी है, गुजरात का भी माने गिरनार से, वो तो सिद्ध क्षेत्र की बात हुई, बतला रहा हूँ। अष्टापद से आदिनाथ गए, कैलाश पर्वत, पावापुरी से महावीर स्वामी, वो तो ऐसे ये जो क्षेत्र का जो हुआ तो ऐसा लिखा है, काल के कारण से, काल पे दोष आता है, जो होना था वही हुआ। अब कब अभी बताया था ना, दो दिन का उपवास लेके ही जाते हैं, नियम है। अरे कोई भी मुनि बनता है दो दिन का उपवास धारण करते हैं, सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ली जाती है, और तीसरे दिन विकल्प आता है तो आहारचर्या को आते हैं। और भरत चक्रवर्ती को देखो तो कोई भी पूर्णता का ही शुद्धोपयोग का ही कहना चाहिए, पुरुषार्थ जागृत रख के ही दीक्षा ली जाती है, वो तो उसमें स्थिर ना हो पाए तो उस मर्यादा में वर्तन प्रवर्तन की बात चलती है। और मैं दो मिनट ले रहा हूँ क्योंकि समय तो हो गया, बताना है अपने तीर्थ तीसरे कौन से बाल्यती नैमिनाथ, उनका जीवन चरित्र आप, यानी गुजरात में ही सब हुआ जन्म और वो सब, उनकी कथानक सबको पता है। उनका भी मल्ली कुमार की तरह विवाह उत्सव में ही वैराग हुआ। उसमें बतलाना इतना है कि श्री कृष्ण नैमिन ये दोनों चचेरे भाई थे, समुद्र विजय बड़े और वसुदेव छोटे, ये 10 भाई थे। तो समुद्र विजय के बेटे नैमिनाथ और वसुदेव के बेटे श्री कृष्ण, वासुदेव उनको ही बोलते हैं, पिता का नाम वसुदेव था, वसु कुमार या वसुदेव। और वो सब कंस कौन था, किसका मामा, देवकी का भाई था, और देवकी जन्मदात्री थी किसकी, कृष्ण की। और उनके पहले कैसे कैसे उसको बता दिया गया था, कैसे बालक होंगे से तेरी इसका ये होगा, और वो सब घटनाएं घटी, कहीं उन केवली परमात्मा के अनुसार कुछ भी अन्यथा नहीं हुआ। कृष्ण की मौत भाई जनत कुमार के बाण से, और कहते प्यासे मरे, और बलभद्र का ऐसा प्रेम, 6 महीना उनको लिए घूमते रहे, मेरा भाई मरा नहीं है, रूठ गया है मेरे से, कई ऐसी बातें जानने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार से पार्श कुमार का आते हैं अपन, तो पार्श कुमार के जीवन में क्या हुआ, 9 भवों से कितनों से चल रहा था बैर विरोध, किसका, वो कमट के जीव का, वो सब घटनाक्रम अपन ने सुना पड़ा है। लेकिन इसके बारे में मैंने एक पेज बनाया था, वो यहाँ लाना भूल गया, समय भी नहीं है, कि क्षमा एज मोक्षनो भव्य दरवाजो थे, ये पार्श कुमार के ऊपर से मैंने घटाया। हर पर्याय में कमट का जीव क्या करता है, बदला लेता जाता है, बदले उसको स्मरण, और प्रभु क्षमाशील अपना उसका करते जाते। पिछले बार डॉक्टर भाली जी ने यहाँ कहा था कि हम कमट को तो दोषी ठहराते हैं, अरे अपन कर्म का भी दोष देखो तो प्रभु का भी ऐसा पाप का उदय था, ख्याल में है ना, बिना उसके नहीं दूसरा कुछ कर सकता, ऐसे ही कभी बांधा होगा कर्म। और इन्होंने क्या सोचा पार्श कुमार ने, कि आयु कितनी, 100 वर्ष की, अरे मल्ली कुमार का तो कितनी थी, 55,000 वर्ष की, और बासपूज की थी कितनी, अभी ये बताया 72 लाख वर्ष कितनी थी पार्श कुमार की, कितनी थी आयु? हाँ जल्दी, अरे पार्श कुमार की 72 वर्ष तुम वर्धमान महावीर स्वामी की थी, 100 वर्ष ही तो बताया तुम्हें, हैं बराबर है? तो फिर आप लोग छेड़ देते नहीं थे। चलिए, और उसमें क्या कुछ है अंतर? चलिए अभी निकल जाना चाहिए। और उनने देखा मेरी आयु तो बहुत थोड़ी है, और इसमें मैं संसार चक्र में फंसूं तो नहीं फंसे, यही वर्धमान स्वामी के साथ हुआ। और इसी तरह से वो वैराग धारण लेकर के, तो गुरुदेव श्री क्यों स्मरण करते थे कि उन्होंने स्वयं दीक्षा ली थी, ली थी कि नहीं, और वस्त्र फट गया था तो उनको तो अपशकुन का याद आ गया और पूर्व भव के संस्कार याद आए और वो सब योग मिलता गया और सच्चा धर्म चक्र का सच कहें तो प्रवर्तन करके चले गए कि ये वास्तविक अनादि निधन धर्म है, ये कोई संप्रदाय धर्म है, दिगंबर जैन धर्म कोई बाड़ा अखाड़ा संप्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। और ये बतला करके उनका पवित्र जीवन मैंने तो बहुत निकट से देखा है, कितना वैराग चित्त कैसा रहता था। हम आप भी इन महापुरुषों के जीवन से ऐसा वैराग जीवन में धारण करके और उसको जो मिले क्षण हैं राग से बच के उसको आत्म साधना में लगाएं, तो ही अपना नियम से अपन भी उस मार्ग में पूर्वचर सहचर और उत्तरचर पूर्वक सिद्धालय में जाबरा जाएंगे। और मैंने भी इतने दिनों में कुछ वो गलत बोला हो जिनागम विरुद्ध, तो सर्वप्रथम वीतराग देव सदगुरु से क्षमा याचना, आप सबके को लगा हो कि कोई गलत शब्द बोला तो उसके प्रति क्षमा याचना। और इससे मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, अगला भी सेशन जो भी हो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ना बुलवा, मैं तो श्रोता बन के सुनूँगा, कि मुझे बहुत मज़ा आता है विद्वानों को सुनने में। सब अपना रिसर्च करके लाते हैं, सबकी अपनी अपनी शैली होती है, सब अपन गुरुदेव के ही शिष्य हैं, और मैं ये नहीं समझता कि ये सब विद्वान नहीं है, जान सब रहे हैं सत्य क्या है, एक बोलने की कला आ गई तो उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। इस प्रकार से मैं आपका अपना आज का अंतिम वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
अपने पास दो विद्वान बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं, रघुवंशी जी और रमिका, ज्ञान वृद्धि करनी है, ज्ञान वृद्धि करनी है।